ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसूतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदी गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 17। अभी हम ज्ञेय के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने 13 में बताया कि जो आत्मा जो ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म है वो अनादि तो है बट मत परम है। और उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण ने जो आनंद ब्रह्म है उसके विषय में बताना शुरू किया। पहले बोला कि हर जगह पर उसकी समस्त इंद्रियां हैं, इंद्रिय रहित नहीं है लेकिन हर जगह पर है, इसीलिए वो हम सबको महसूस कर सकता है, हम सबको देख सकता है, हम सबकी दी हुई चीजों को स्वीकार कर सकता है। और आगे बताया कि वो ऐसा है कि समस्त इंद्रियों के मूल है लेकिन इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, यानी कि भौतिक इंद्रियों से वो नहीं जाना जा सकता, गुणों से परे है क्योंकि तीनों गुणों से बिल्कुल परे है। और आगे बोला बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चर, जो भी चर चाहे अचर जितने भी जीव हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सबके अंदर और बाहर वो है, इतने सूक्ष्म है और दूर होते हुए भी हम सबके बहुत ही नजदीक हैं। इन सबको श्री प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। इसी चीज को आगे हमें बता रहे हैं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम् भूतवृत्त च यत्तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम च भूतेषु, अविभक्त का मतलब होता है विभाजन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग तकसीम शुदा, हमें ऐसा लगता है कि उनका विभाजन किया गया। अब देखो परमात्मा हर एक के हृदय में, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश स्वरूप जो हम सबके हृदय में है, तो ऐसा नहीं लगता है इसको सुनने के बाद कि भगवान श्री कृष्ण के अंश थोड़े थोड़े निकाल के, भले बाल के अग्रभाग के 10,000 में हिस्से के बराबर ही क्यों ना हो लेकिन थोड़ा थोड़ा निकाल के सबको सबके अंदर डाल दिया गया, ऐसा लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के अंदर से निकाला हुआ पीस नहीं है हम लोग, हम भगवान का अंश हैं, मगर हमारी एक इनफरादी, एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर हैसियत है। ऐसा नहीं कि भगवान के अंदर से, भगवान की जो आत्मा, भगवान पूरे के पूरे आत्मा है, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा निकाल निकाल के सारे जीवों के हृदय में डाल दिया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैसे बता रहे हैं, अविभक्तम च भूतेषु, वो सारे भूत जितने भी हैं, समस्त जीव हैं, उनमें विभक्त नजर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नजर आते हैं। विभक्त मेव एवच, विभक्त मतलब बंटा हुआ, एवच ऐसा फील होता है, हमें नजर आता है। भूत वृत्त च तज किए, भूत वृत्त च मतलब समस्त जीवों का पालक, वो फिर भी नजर आता है ऐसा, लेकिन वो कभी भी विभाजित होता नहीं है, विभक्त वो भटा हुआ नहीं होता है, और सारे जीवों का पालन करने वाला है। भूत वृत्त च तज किए, उसको ये समझना चाहिए कि वही वो पालने वाला है। आगे एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर लिखी हुई लाइन, ग्रहस्विष्णु, ग्रहस्विष्णु का मतलब होता है निगलना या संहार करना या मार डालना, यानी कि वो सबको मारते हैं, वो संहार करते हैं, लेकिन फिर भी भूत वृत्त तज किए, उसको क्या समझना चाहिए कि वो सबको पालन करना पालन करते हैं। और प्रभा विष्णु, प्रभा विष्णु का मतलब होता है विकास, हमें जो कुछ भी मिला है अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, हमारी जो भी विकास हो रहा है संसार में या भौतिक या आध्यात्मिक, वो सबका कारण जो है वो कृष्ण है। अर्थात अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम, यानी कि वो अविभक्त नजर आते हैं लेकिन फिर भी वो बटे हुए नहीं है। भूत वृत्त च तज किए, उसको पालन करता हुआ समझना चाहिए, जबकि वो ग्रहस्विष्णु वो सबको खाने वाले हैं, सबको निगलने वाले हैं, और प्रभा विष्णु जो सबका पालन भी तो वही करते हैं, सबको सारी चीजें उनको प्रोवाइड भी तो वही करते हैं। यानी यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सारे लोगों में है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है, उसका रूप कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उसको कभी भी काट काट के किसी के अंदर नहीं डाला गया है, वो एक ही जीव, एक ही स्थित है, एक ही जगह पर, एक ही रूप में है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, वो पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। वो पालन भी करता है, संहार भी करता है, हालांकि ये तीनों अलग अलग के काम है। पालन कौन करता है? विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के रूप में वो पालन करता है, और संहार शिव जी के रूप में वो संहार करते हैं, और सबों को जन्म सृजन कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जिस ज्ञेय की बात मैं कर रहा हूँ, ये अकेला ही सारे कार्य कर रहा होता है, अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं, अलग अलग प्राकट्य है उसका, लेकिन ये सारा का सारा करने वाला एकमात्र वही है जिसके विषय में अभी बात कर रहे हैं। तो आगे तात्पर्य मिश्र प्रभुपाद जी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वो बंटे हुए हैं? यानी कि इसे आपको ऐसा समझ में आता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, थोड़े थोड़े सारे के अंदर डाल दिए, बचा क्या उसके पास? इतने करोड़ करोड़ तो जीव है, खाली 84 लाख किस्म तो क्वालिटीज है, क्वांटिटी कितनी होगी? कितनी सारी, एक एक योनि में तो करोड़ों करोड़ लोग हैं, तो मतलब करोड़ करोड़ जीव है, तो क्या सबके अंदर थोड़ी थोड़ी आत्मा भगवान की निकाल के दी गई, तो क्या उसके पास बचा कितना होगा? थोड़ी सी आत्मा बची होगी, ऐसा फील होता। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, वास्तव में वे एक हैं, यानी कि वो बटते नहीं हैं, वो एक ही रहते हैं। इसको पता है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा था, जब ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र मैंने पढ़ा था, इतना उसमें अच्छा बताया गया था। मंत्र ऐसे है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, मध मतलब ऊपर जहां पर वो रहता है, गौलोक वृंदावन धाम में, वहां पर भी वो पूर्ण है। पूर्णमिदम, इदम मतलब इस संसार में भी वो पूर्ण है, इसका मतलब है कि वहां पर भी वो पूर्ण है, यहाँ पर भी वो पूर्ण है। वो कैसे हो सकता है? पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यानी कि वो सब पूरा का पूरा पूर्ण है, और जो उससे निकलता है वो भी पूर्ण है। ऐसा नहीं कि जो निकलता है, जैसे हमारे पास एक पूरी कंप्लीट चीज हो उसमें से आधी निकालेंगे तो जो बची होगी वो आधी रह जाएगी ना, लेकिन पूर्ण पूर्ण मुदच्यते, जो उसमें से निकलता है वो भी पूरा है और वो स्वयं भी पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्ण आदाय, वो अस्य यानी कि वो खुद भी पूर्ण है और उसका आदाय, आदाय मतलब उसका जो आधा किया जाता है वो भी पूर्ण है। पूर्णमेवा वशिष्यते, और जो वो खुद भी पूर्ण है उसका आधा किया गया वो भी पूर्ण है, और उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो जो बच जाएगा वो भी पूर्ण है। यानी कि भगवान विभक्त नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि सारे प्राणियों में, लेकिन वो भले करोड़ों करोड़ सृष्टियां अपने अंदर से निकालते हैं, उसके अंदर से निकलते हैं, सारे जीव के अंदर वो विभाजित हैं, लेकिन उनकी पूर्णता कभी भी समाप्त नहीं होती है, वास्तव में वो एक ही होते हैं। यहाँ पर इसको श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जा सकता है। सूर्य मध्याह्न समय यानी कि जब दोपहर का टाइम होता है उस समय अपने स्थान पर रहता है, खुद अपनी जगह पे होता है ना, हर जगह पे तो नहीं होता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह तो उसके सिर पर चमक रहा है। यानी कि वो है किधर, अपनी जगह पे, लेकिन वो हर कोई इंसान ये सोचेगा कि सूर्य मेरे ऊपर है। तो इससे जरा भगवान श्री कृष्ण भी अपने जगह पर है और हर कोई को लग रहा है कि वो मेरे अंदर है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित हो, यानी कि वो कभी विभाजित नहीं होते हैं, वो अपनी जगह पर ही होते हैं, लेकिन ऐसा उनकी उनकी किरणें इतनी तीव्र हैं कि ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर वो बैठे हुए हैं, विभाजित नजर आते हैं। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है, यानी कि खाली एक विष्णु भी सारी जगहों पर है, उनके अंदर इतना पावर है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति उनके स्थानों में होती है, जिस तरह एक ही मनुष्य अपनी जगह पर सूर्य को देखता है हालांकि सूर्य अपनी जगह पर है, इसी तरह से विष्णु भगवान जब उनकी भगवान की एक छोटी सी शक्ति, छोटा सा एक, ये तो क्या है सूर्य, कितना अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने 10.42 बताया था, यद्यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभव। जो भी तुम्हें प्रतापी, जो भी शक्तिमान, जो भी ऐश्वर्यमान लगता है वो मेरे तेज के एक छोटी सी किरण, एक छोटा सा सफुलिंग के बराबर है। जब एक छोटे से सफुलिंग सूर्य के अंदर इतना पावर है तो क्या कृष्ण ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा है। तो जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य अपने अपने अनेकों स्थानों में प्रतीत होता है, यदि भी परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं, यानी कि वो ही पालन करने वाले हैं, वो ही भक्षण करने वाले हैं, इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है। श्रील प्रभुपाद ने तो बता दिया कि 11वें अध्याय में हमें बता दिया गया है कि वो भगवान श्री कृष्ण सबको भक्षण करते हैं। वो कहां पर बताया, 11.32 भगवान ने कहा था, कालोस्मि लोकक्षय कृतवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनेकेषु योद्धाः। भगवान ने कहा समस्त जगतों को नष्ट करने वाला काल में हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो प्रभुपाद जी हमें इसी श्लोक को याद करा रहे हैं कि भगवान ने 11 चैप्टर में ये पहले ही बता दिया कि मैं ही सबका काल हूँ। जहाँ पर भगवान कहते हैं कि वह कुरुक्षेत्र में एक मात्र एकत्रित सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए ही आए हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं, जैसे हमने श्लोक में पढ़ा, और वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण 10.34 में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, और ये बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि इसमें हम लोगों की भी बात हुई है। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु के विषय में बताया है। भगवान ने कहा मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवस्य भविष्यतां कीर्ति श्री वाक्च नारीणां स्मृतिमेधा दितिक्षमा। मतलब इस श्लोक में पहली वाली जो लाइन है, मृत्यु सर्वहरश्याम, सर्वहरश्याम कितना सुंदर वर्ड भगवान ने कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है कुछ नहीं छोड़ूंगा जब तुम्हें ले जाऊंगा ना, कुछ भी अपने साथ, सर्वहरश्याम। तुम पूरी जिंदगी जिस चीज के लिए स्ट्रगल करते रहे हो ना, कुछ भी जो भी तुमने भौतिक आपने अर्जित किया है वो सारा का सारा मेरा है, तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। सर्वहरश्याम, मैं उसको हरण कर लूंगा जब मैं मृत्यु के रूप में आऊंगा ना, तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लूंगा, और जो तुमने मेरे लिए किया है संसार में, जो मेरा नाम लिया है या मेरी सेवा की है वो मैं तुम्हें दूंगा। अपने लिए जो कुछ अर्जित किया, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने लिए जो कुछ किया वो सब मैं तुमसे हरण कर लूंगा, क्योंकि तुम्हें मैंने यहाँ संसार में अपने लिए जीने के लिए नहीं भेजा था। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि मनुष्य जीता इसलिए, मनुष्य आजकल मनुष्य क्यों जीते, खाने पीने एंजॉयमेंट के लिए जीते ना, लेकिन जीने का वास्तविक लाभ क्या है, तत्व जिज्ञासा, कि आप कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कैसे ऊपर उठा सकते हो, कैसे कृष्ण प्रेम में उन्नति कर सकते हो। तो जो कार्य आप, जो रियल कार्य है उसका जो भी फल है वो आपके साथ जाएगा, और जो बाकी जो कचरा यहाँ पर करते हैं, जो गंदगी करते हैं, वो सारी की सारी भगवान ने कहा सर्वहरश्याम। आगे भगवान कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं, और प्रलय के समय उन सबों को निगल लेते हैं, यानी कि शुरू में सबको बनाते हैं और एंड में सबको खत्म कर देते हैं। वैदिक स्तोत्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके अनादिरादि गोविंदम, उसका कोई आदि नहीं है, सबका आदि वही है और सबके आश्रय वही है, सर्व कारण कारणम, सब कुछ करने वाले वही है। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमता पर टिकी रहती हैं, और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उनमें आश्रय विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। उस जब संसार कैसे टिका होता है, लोग क्या बोलते हैं, ये सारे ग्रह, साइंसदान क्या बोलेंगे कि ये सारे ग्रह क्यों टिके हुए हैं, क्योंकि गुरुत्व आकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स, साइंस बोलते हैं ना, ग्रेविटी फोर्स के कारण ये सारे ग्रह अपने अपने मदारों में घूम रहे होते हैं, टक्कर नहीं लग रही होती है, सब इसीलिए उठे हुए हैं क्योंकि आकर्षण, ये जो ना गुरुत्व आकर्षण बल है, जो ग्रेविटी फोर्स है उसके। लेकिन फोर्स का क्या मतलब होता है, फोर्स का मतलब होता है शक्ति। अब शक्ति है, कोई पावर है तो कोई शक्तिमान भी होना चाहिए ना, ये किसकी शक्ति है, तो ये चीज को साइंसदान क्लियर नहीं करते, बस ये शक्ति है, ये फोर्स है, ये फोर्स किसका। जैसे अभी मैं आपको थप्पड़ मारूं और बोलूं भाई ये तो किसी की शक्ति ने मारा है, तो शक्ति है तो जाहिर सी बात है शक्तिमान भी होगा ना, तो यहां पर भी ये फोर्स है, तो एक्सैक्टली वो फोर्स किसकी है, भगवान श्री कृष्ण की। तो यहाँ पर बता रहे हैं, प्रलय के समय सारी वस्तुएं, शुरू में क्या होता है, सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उन्हीं की शक्ति मता बट्टी की होती है, ये फोर्स कृष्ण की है, ये शक्ति कृष्ण की है, और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती है, जो कारण दक्षा विष्णु के अंदर सब कुछ चले जाते हैं। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं, यानी कि ये मैं अपनी, श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये मेरे वाक्य नहीं है, वैदिक जो स्रोत्र हैं, शास्त्र है उनमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। और आगे तैत्तरीय उपनिषद 3.1 में श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि संसार में यतो वायमानि भूतानि, यानी जो भी इस संसार में हो रहा है, जो भी संसार में लोग आते हैं, जायंती ये जाता नहीं, आते हैं पैदा होते हैं और जब वापस से चले जाते हैं, और इनके बीच में उनके पास जो भी यत प्रयंती विषय, वो जो प्रयत्न करते हैं, जो काम करते हैं, उसका शक्ति विसवंशंति, उसको जो भी कुछ मिल रहा होता है तद ब्रह्म, वो सब कृष्ण से मिल रहा होता है, भगवान से मिल रहा होता है, उसके अंदर पावर सारा, और तद विजिज्ञासन, और जो भी वो जिज्ञासा करता है, जो भी उसको प्राप्त होता है और जो भी कुछ अर्न करता है, वो सब कुछ जो भी इस यहाँ पे पालन करने के लिए उसको, वो सब कुछ सब भगवान परम शक्ति माता जो घी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसी से प्राप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।